ओम शांति, ओम शांति। सभी बहुत व्यस्त रहने वालों को बाबा ने एकांत में तपस्या करने का गोल्डन चांस दिया है। बहुत व्यस्त रहते हैं ना सभी, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अकाउंट की सेवा में तो मन बुद्धि बहुत व्यस्त रहे, और ऐसे व्यस्त जीवन से समय निकालकर व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना ये भी एक बहुत अच्छे उमंग की निशानी है। तो आप सभी आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे होंगे। इस हाल में जब बैठते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे अंडरग्राउंड गुफा है, इसमें बहुत अच्छी तपस्या के वाइब्रेशन है। आज आप सबको विशेष टॉपिक जो दी है हमें, नेचुरल मनसा सेवा कैसे की जाए, इसका अभ्यास कैसे करें, क्योंकि बाबा की कई मूल्यां चल रही हैं वर्तमान समय के अनुसार। बच्चे, ऐसा समय आएगा जो वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, केवल मनसा द्वारा ही आप आत्माओं की सेवा कर सकेंगे, समीप ला सकेंगे, उन्हें मदद कर सकेंगे। कई बार बाबा हम सबको इस पर विशेष इशारा दे रहे हैं, और वर्तमान समय जब तक वाचा सेवा के चांस मिल रहे हैं तब तक बाबा कहते हैं तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। मनसा बहुत पावरफुल शुभ भावना से संपन्न हो, वाचा से ज्ञान दान करो, और कर्मणा से सबको स्नेह दे करके उनको समीप ला करके परिवार की पालना दो। तो जब हम तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट निकलती है। लेकिन जब मनसा सेवा की बात आती है तो सेवा शब्द तो बड़ा ऊंचा शब्द है, और कोई भी सेवाधारी सेवा तब कर सकता है जब उसके पास शक्ति है, ताकत है। अगर कोई का शरीर कमजोर है और उसको आप बोलो भाई चार बाल्टी पानी भर करके यहाँ पहुंचा दो, कहेगा मेरे से नहीं होगा, ये सेवा तो नहीं हो सकती ऐसी। शरीर स्वस्थ है तो कोई भी कर्मणा सेवा उसको दी जाती है तो कर लेता है। ऐसे ही अगर हमें मनसा सेवा का अभ्यास करना है तो मनसा को बहुत शक्तिशाली बनाना होगा। और मन की शक्तियां जा कहां रही हैं, नष्ट कहां हो रही हैं, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सोचने में। कुछ दादियों के मिसाल दे करके मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है कि मनसा सेवा की जो बाबा ने साकार में मूल्यां चलाई, अधिकतर बाबा को जब बांधेली बच्चों के पत्र आते थे तो बाबा को बहुत उनको ख्याल चलता था, ऐसे बच्चों को सताते हैं, ऐसे मारते हैं। बाबा पत्र पढ़ते थे और कहते थे बच्चियों ने तो मेरी नींद फिटा दी। रात भर बाबा उनको सकास देते थे, मदद करते थे, और कई ऐसे अनुभव हैं। एक बार एक बांधेली माता जो बहुत पति उसको सताता था, लेकिन बाबा से इतना प्यार था, जो सब्जी वाली आती थी उसको कहती थी तुम्हारी सब्जी मैं खरीदूंगी, लेकिन तुम सेंटर पर इसके बीच में छिपा करके मुरली सेंटर से ले आओ। तो सब्जी वाली आराम से सेंटर से मुरली मांगती और लेकर के सब्जी के बीच में रख लेती, और जब सब्जी लेने के लिए वो निकलती तो सब्जी के साथ साथ उसको मुरली दे देती, और वो मुरली लेकर के कहां पढ़े तो बाथरूम में जाकर के पढ़ती थी। एक दिन कोई ऐसे जल्दीबाजी में मुरली उसकी बाथरूम में छूट गई, और जब उसके पति की उस पर नजर पड़ी तो उसको बहुत पीटा, बहुत पिटाई किया, तुम छिप छिप करके यहाँ पर ये सुनती है पढ़ती है। तो बहुत चोट आई उसको, बहुत दर्द था, और उसने बाबा को पत्र लिखा। जब बाबा को पत्र लिखा और बाबा तक आया समाचार, तो बाबा रात भर उसको शक्ति दिया, सकास दिया। और फिर उस बच्ची ने अनुभव ये किया कि यहाँ बाबा सकास दे रहे हैं, वो सोई हुई है, लेकिन जैसे बाबा उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, उसकी दर्द को खींच रहे हैं, तो उसने फिर पत्र लिखा, बाबा कल रात तक बहुत दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई महसूसता ही नहीं, आप आए और आपने आकर के मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरा दर्द खींच लिया। ऐसी बाबा की मनसा सेवा थी साकार में। और जब एक बार हमारे दादा विश्व किशोर ऑपरेशन कराने के लिए गए बॉम्बे में, 68 की बात है, बाबा का बहुत स्नेही बच्चा था, मालूम होगा विश्व किशोर दादा राइट हैंड थे, और वो दादा को थोड़ा ही छोटा ऑपरेशन था, लेकिन बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, एक दो दिन ठीक रहे, फिर बहुत दर्द हुआ। तो उनकी युगल संतरी दादी साथ में थी, निर्मल शांता दादी साथ थी, क्योंकि लौकिक में भी संबंध थे। तो संतरी दादी ने बाबा को संदेश भेजा कि बाबा बहुत दर्द है उसको। बाबा ने पूरी रात उसके लिए योग किया, सकास दी, उसके दर्द को खींचा। फिर बाबा की मुरलियां चली, बच्चों को विशेष ऐसे दुख दर्द के समय मनसा सेवा करनी चाहिए, सकास देनी चाहिए। 68 की मुरलियों में तीन शब्द बाबा के मनसा के संबंध से आए। एक बाबा ने कहा मनसा द्वारा सकास दो, दूसरा कहा मनसा द्वारा सर्च लाइट दो, और तीसरा कहा करंट दो। मैं करंट देता हूं बच्चों को, करंट से रोशनी भी आती है, करंट से कई बीमारियों को भी खींच लेते हैं, सर्च लाइट से भटकती हुई आत्माओं को रास्ता मिल जाता है, मनसा द्वारा सकास देने से उसको शक्ति मिलती है, सहारा मिलता है। तो इन शब्दों का प्रयोग साकार बाबा ने किया हुआ है 68 की मुरलियों में। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होकर के बाबा ने इसकी बहुत सुंदर गहराई स्पष्ट की। मनसा सेवा किसको कहा जाता है, सकास क्या है, और इसके लिए मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, बहुत गहरी साइलेंस चाहिए, सब आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं चाहिए। प्रैक्टिकल में हमने मनसा सेवा की सबसे नंबर वन आत्मा दादी जानकी जी को देखा। वो जानकी दादी जी की जो तपस्या थी, जो उनकी एकाग्रता थी, जो उनके गहरे साइलेंस के अनुभव थे, उसके आधार से उन्होंने कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में, जो संस्था के ऊपर, हमारे विद्यालय के ऊपर कई प्रकार के विघ्न आ रहे थे, उनको मनसा सकास से, योग बल की शक्ति से ठीक किया, गुप्त रीति से किया। एक प्रैक्टिकल की बात सुनाता हूँ। हमारे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट रमन जी थे, पहले ज्ञानी जयल सिंह जी राष्ट्रपति होकर के तो यहाँ आए, लेकिन उसके बाद जब ओम शांति भवन बन रहा था, उसके बाद में उनको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया कि आप मधुबन आए, तो तैयार हो गए कि हम चलेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग एकदम कुछ जलसी के कारण, कुछ कारणों से बहुत गलत रिपोर्ट भेजने लगे कि बिल्कुल नहीं लाना इनके पास। तो उनकी तैयारी है कि मुझे जाना है, लेकिन प्रोटोकॉल बिल्कुल उसको ना कर रहा है, नहीं जाना, मना, माउंट आबू की गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी नहीं है। तो तो दादी को आया संकल्प की कुछ प्रयोग किए जाए। और दादी योग के प्रयोग करने के लिए क्या करती थी, इंद्रप्रस्थ में रहती थी, यहाँ पर पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ है ना, तो इंद्रप्रस्थ में दादी का कमरा था। और शाम को 6:30 बजे कहती थी बाहर से ताला लगा दो, और कोई पूछे तो बोला दादी रेस्ट में है। तो रात को शाम को ही ताला लगवा लेती और सुबह तक क्या तपस्या करती कैसे करती उन्होंने कभी इसका वर्णन नहीं किया। लेकिन जब वो राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जब यहाँ आए तो इनका पूरा ही जो प्रोटोकॉल ऐसा बनाया उन्होंने कि वो आएंगे, उसके बाद सर्किट हाउस में फ्रेश होने जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद दिलवाड़ा जाएंगे, दिलवाड़ा के बाद इधर, माना जो प्रोग्राम बनाया उसमें केवल आधा घंटा ब्रह्मा कुमारी को दिया। प्रोग्राम तो बन गया था, ठीक है, दादी ने कहा जैसा है आ तो रहा है कम से कम। लेकिन जब उसका हेलीकॉप्टर पोलो ग्राउंड में उतरा तो हमारा एक ग्रुप जो उनको रिसीव करने के लिए गया था वो सब सफेद ड्रेस में थे, और उनके सब तो कलर वाले होते थे, वो अलग खड़े थे, ये अलग खड़े थे। उतरते ही सीधा ही बहनों के बीच में, सफेद ड्रेस के बीच में आया और कहता है आपकी गाड़ी कहाँ है, आप आगे आगे ले चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अब उसकी हमारी गाड़ी आगे चली, उसकी गाड़ी पीछे पीछे, और सारी सिक्योरिटी, सारे लोग अधिकारी दूसरी साइड में खड़े, वो पीछे पीछे भागे आए और सीधा ही अपने पांडव भवन में आया। पांडव भवन में करीब 2-2.5 घंटा रहा, दीदी जी का कमरा तैयार था, उसमें फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और बहुत अच्छा मेडिटेशन हॉल में प्रोग्राम चला। 2-2.5 घंटा आराम से एकदम जैसे परिवार का सदस्य है ऐसे मिला जुला, कोई सिक्योरिटी कोई ऐसी प्रतिबंध नहीं। और सब करने के बाद सीधा ही कहता है पोलो ग्राउंड ले चलो, और वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ा और चला गया, कहीं नहीं गया। तो जब बाबा आए 3-4 दिन के बाद, बाबा का प्रोग्राम था, तो बाबा ने कहा बच्ची योग का चमत्कार देखा, ये बच्ची की मनसा सेवा है। जानकी दादी की तरफ इशारा किया, इस बच्ची ने ऐसा एक सुंदर लाइट का घेरा बनाया संकल्पों से, जो वो आत्मा अपने हाउस से उसी लाइट के घेरे से निकली और लाइट के घेरे से आई और सारा कार्य करके उसी लाइट के घेरे से वहां चली गई। ऐसा लाइट का घेरा कैसे बन सकता है, इतने पवित्र शुद्ध संकल्प, इतनी अच्छी एकाग्रता। और दादी की एकाग्रता के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, नंबर 1 संकल्पों पर उनका कंट्रोल था। हम सब बाबा के बच्चे, भले कितनी भी सेवाएं हों, बिजी रहो, कार्य करो, लेकिन मन बुद्धि को व्यर्थ से बचाओ। जहां पर भी व्यर्थ चलता हो, व्यर्थ के कारण तो हम सब जानते हैं। गुलजार दादी हमेशा इस पर क्लास कराती थी कि अगर कोई चीज देख करके प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब प्रश्नों की जाल व्यर्थ की उत्पत्ति का कारण है। क्यों आप सब व्यर्थ सोचते हो, जब बाबा कहता है ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई भी गलत हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ड्रामा के किसी खेल को देख करके प्रश्न उठा रहा है, माना वो अपना नया हिसाब किताब बना रहा है, वो अपने बाबा को पहचानता नहीं है। जो ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है, उसको ही नहीं पहचान रहा है और उसके बने बनाए ड्रामा में अपने नुक्स निकाल रहा है, अपनी बुद्धि चला रहा है। हर सीन में कुछ न कुछ राज है, कुछ न कुछ कल्याण है, और उस कल्याणकारी दृष्टि से हर एक के पार्ट को साक्षी दृष्टा होते हुए देखना। देखो जरूर, दिखाई तो देगा, आंखें तो थोड़ी बंद करेंगे, लेकिन उसका वर्णन करें, उसका चिंतन करें, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो। एक दिन की रमणीक बात सुनाता हूं। कुछ हमारे ऑफिस के कनेक्टेड कुछ काम था और कुछ भाई की एक रिपोर्ट थी। सबने कहा कि भाई राजू भाई आपको इस ऑफिस में इसको नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो मुझे जरूर इसको हटाना चाहिए यहाँ से, कंप्लेन आ रही है। तो मैं दादी के पास गया, जानकी दादी के पास, बड़ी दादी अव्यक्त हो गई थी, दादी जानकी मुख्य थी। जब मैंने कहा कि दादी हमारा एक विचार है, सब शांतिवन वाले मधुवन वाले कहते हैं उसको यहाँ से हटा दो, निकालो अपने डिपार्टमेंट से, तो जब मेरी तरफ दादी ऐसे देखती है बहुत प्यार से मुस्कुराते कहती है अच्छा उसको यहाँ से तुम निकाल देगा तो बाहर जाके वो सुधर जाएगा। जब इस वातावरण में तुम उसको नहीं बदल सकते हो तो क्या बाहर जाके बदल जाएगा, यही सुख भावना है। चुप हो गया मैं तो। कहती तुम सभी सुख भावना का दान दो, अपना श्रेष्ठ संग दो, कंपनी दो, हमको नहीं निकालना है किसी को, हमें निमित्त नहीं बनना है। लेकिन अगर उसका पार्ट नहीं है धरनी में, अगर वो सुधरता नहीं है, कुछ गलत करता है, तो धरनी उसको यहां से निकाल देगी। सुना, तुम नहीं निमित्त बनो। इतना अंदर से शुभ भावनाओं से संपन्न आत्माएं रही हैं, नेचुरल शुभ भावनाओं से संपन्न। कोई भी आत्मा के प्रति उनके अंदर घृणा नफरत कुछ भी वो कर रहा है, रिपोर्ट आ रही है, जानते हैं गलत है, यज्ञ का नुकसान हो रहा है, बदनामी भी हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी शुभ भावनाएं नहीं छोड़ी। ये उनकी मनसा की शक्ति थी। ठीक हो जाएंगे, आप लोग योग करो, योग के प्रयोग करो, मनसा से सकाश दो, शुभ भावनाएं रखो, बदल जाएंगे। कहां बदलेंगे जाकर के, दुनिया में कौन सा स्थान है इससे अच्छा जो वहां जाके बदल जाएगा। मैं तो चुप हो गया। ये मनसा सेवा एक नेचुरल हो जाए उसके लिए शुभ भावनाओं का पूरा स्टॉक चाहिए। हमारी इस कई बात होती ना, मनसा सेवा करें, योग करें, इसके लिए योगदान दें, ये मकान हमको मिल जाएगा, ये विघ्न खत्म हो जाएगा, स्वार्थ। बाबा ने कभी ऐसी सेवा नहीं सिखाई हम सबको, निस्वार्थ भाव से बेहद की स्थिति में रह करके। आजकल की दुनिया में जो चारों तरफ से एक हाहाकार का वातावरण बना हुआ है, आप सब जानते हो वर्तमान समाचारों के अनुसार, एक तरफ प्रकृति अपना फूल तांडव कर रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं अचानक इतनी बरसात पड़ रही है, बाढ़ आ जाती, और साइंटिस्ट तो अपना, राजनेता है तो अपने धन में लगे हुए हैं, कोई बॉम्ब्स का प्रभाव दिखा रहा है, एटॉमिक वार की धमकी दे रहा है, पूरी दुनिया जब विनाश के कगार पर है, और कल क्या होगा अनिश्चितता का वातावरण है, कोई भी पता नहीं क्या होगा, किसी को भी पता नहीं, अचानक कुछ भी होगा, लेकिन क्या हम सब ने अपने मनोबल को इतना बढ़ाया है, मन को इतना सशक्त बनाया है कि किसी भी प्रकार की खुद के ऊपर कोई हिसाब किताब आ जाए, या संबंधों पर आ जाए, या यज्ञ पर आए, या दुनिया के अंदर आए। मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ शुभ मनसा द्वारा परमात्म किरणों को लेकर के उनको शक्ति दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। कोई कहता मैं मनसा सेवा करता हूं, हम कहते हम मनसा सेवा क्या करेंगे, सेवा तो बाबा ही करेगा, लेकिन हम अपने मन को इतना स्वच्छ रखें, साफ रखें, शुभ भावना से संपन्न रखें, जो बाबा के शुभ संकल्प किरणों के रूप में यहां आए और वो कार्य करें। हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम करेंगे तो थोड़ा अपना भी अभिमान आ सकता, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इसको टच किया, मैंने ये सेवा किया, वहां मैं आ जाएगा, अहम भाव आएगा। बाबा इससे भी बच्चों को मुक्त करते, बच्चे देखो आज सूर्य ज्ञान सूर्य निकलता है, अगर कांच बहुत स्वच्छ है, साफ है, और सूर्य की किरणें उस पर आ रही हैं, तो किरणें उस कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के शक्तिशाली बन जाती हैं, और वो बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं, सोलार एनर्जी पैदा हो रही है, इतने सारे उससे कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो कांच स्वच्छ है, और कांच सूरज की तरह साथ साथ जैसे उसकी परिक्रमा चलती ऐसे उसको भी मोड़ा जा रहा है, निरंतर सूर्य की तरफ है, स्वच्छ है, साफ है, तो वो कांच ही रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की शक्ति को एनर्जी पैदा करा रहा है। हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय मन बुद्धि को इतना स्वच्छ रखें, साफ रखें। अब उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। अभी वरदान में हम सबने 3-4 दिन पहले सुना था, बाबा ने कहा बच्चे मन का बजट बनाओ और उसमें 4 बातें दिया। मैंने जब क्लास कराया उस पर चिंतन किया, हमने कहा 4 नहीं एक और ऐड करो उसमें। जो हम सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, वरदान सुनते हैं, व्यक्ति सारे सुनते हैं, जो बात मुझे टच होती है, अच्छी लगती है, कम से कम उस पर कुछ मिनट मनन करें, चिंतन करें। संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे अच्छा साधन है ज्ञान चिंतन मनन। उसका मनन किया, चिंतन किया और फिर बाबा के साथ मिलन बनाया, बातें की। जैसे कोई स्नेही मिल जाते हैं तो बातें कैसे करते हैं, समय पता नहीं चलता कितना समय हो गया, शुरू हो गई बातें। अब बाबा ने हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई, किस कीचड़े से निकाल करके अपनी गोद में बिठाया। मैं 3 शब्दों का प्रयोग करता हूँ, आज भी बाबा ने 2 शब्द प्रयोग किए। बाबा दयालु है, कृपालु है। 3रा शब्द ने कहा दया और कृपा के साथ तो हम पर ब्लेसिंग दे रहा है, वो हमें दुआओं के छतरी के नीचे रखता है, वरदान दे रहा है। बाबा ने इतनी दया की, अगर हम सब सच्चे दिल से बाबा को शुक्रिया करें कि आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज किस ओर जा रहा है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बोल, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, तमोगुण कलयुग का सबके ऊपर हावी है और उस तमोगुण के प्रभाव के कारण आत्माएं कितने गलत कार्य कर रही हैं। आप शायद अभी 2 दिन से समाचार नहीं सुन रहे होंगे, अब इतनी श्रद्धा भावना से राम मंदिर बनाया अयोध्या में, हजारों लाखों रुपए का चढ़ावा चल रहा है और उसके बीच में वहां के ही बैठे हुए लोगों ने चंदे को चोरी कर लिया, लाखों रुपया चोरी। क्या भगतों की भावना है, क्या लोग कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से भावना से करोड़ों अरबों रुपए का मंदिर उसमें दान किया लोगों ने और चंदा कहां चला गया, किधर चला गया। अभी जागी हुए, जागे हैं, सब खोज कर रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति भ्रष्ट पैसे के कारण क्या कर रहा है, और बाबा ने हम सब बच्चों को उस भ्रष्टाचार से, ये भ्रष्टाचार जो पैसे वाला, उसे तो मुक्त कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। बाबा 2 रोटी खिलाएगा, प्यार से रखेगा, ज्यादा पैसे के कारण मेरे से कोई गलत काम ना हो, पाप कर्म ना हो। इसलिए बहुत ईमानदार, सच्चे बाबा के वफादार बच्चे। कल एक पट्टी में हमारे पास भाई आया, अचानक क्लास कराया तो बाहर, वो SDM की पोस्ट पर, छत्तीसगढ़ का था। कहता भाई जी हमको बहुत वर्क करने पड़े, जहां सरकार का डेलीगेशन जाता है मैं उनके साथ साथ जाता हूँ, और मोदी जी ने एक दिन मुझे देख करके कहते तुम लगता है ब्रह्मा कुमार है, ऐसे ही बोल दिया देख करके। मतलब उसका खाना पीना खाता ही नहीं था कहीं, 8-8 दिन जाता है, फल ही खाता है, कुछ नहीं लेता है। गवर्नमेंट के साथ जाता, सरकार इनकी मंत्रियों के साथ जाना पड़ता विदेश में, अपनी जीवन से अपना प्रभाव डाला है। लोग कहते हैं हाँ भाई कुछ तो ब्रह्मा कुमारी में है, उसका बोल, उसका चलन, उसका चेहरा, उसकी एक्टिविटी से लगता है ये केवल ब्रह्मा कुमारी सिखा सकते। हम सबको बाबा ने कितनी दया दृष्टि की है जो ऐसी श्रेष्ठ जीवन दी है, सरलता है, मधुरता है, निर्माणता है, गुणग्राहकता है, सब विशेष आत्मा है। अगर बाबा की शुक्रिया करो दिल ही दिल में तो पता चलेगा कितनी हम सब पर उसने दया की है, और दया के साथ साथ हमारे पर इतनी कृपा की है जो हमें पढ़ा रहा है, योग्य बना रहा है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सुदर्शन चक्रधारी, नॉलेज फुल, क्या नहीं बाबा ने बनाया अपने बच्चों। हम लोग क्या है, कोई दुनिया की डिग्री लेके आए हैं क्या, लेकिन दुनिया के आगे खड़े तो हैं। कभी कभी वाइस चांसलर्स की सभा होती है, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में 3 वाइस चांसलर एक सभा में थे, सर एग्रोनॉमी प्रोफेसर थे, और जब मैं को खड़ा किया उनके आगे भाषण कहने को, उन्होंने बाबा का शुक्रिया बाबा, तुमने मेरी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं दिखाई लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को सिखाने के लिए खड़ा किया तुमने। एक अंदर का सम्मान है, अभिमान नहीं है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों पर कितनी कृपा की है जो इतना ऊंचा ज्ञान दिया, नॉलेजफुल बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, खुद का ज्ञान, घर का ज्ञान, अपने पिता का ज्ञान, अपने कर्मों का ज्ञान। आप इसको देखेंगे, उस नशे में रहो। दुनिया का ज्ञान तो ठीक है, उससे तो हम कर रहे हैं समाज की सेवा, लेकिन हमें बाबा के ज्ञान का अच्छा चिंतन करना है, मनन करना है और बाबा के प्यार में मगन हो जाना है। तो पहला मनन करो, फिर मिलन के आधार से रूह ध्यान करो, फिर जो प्राप्ति हुई उसका वर्णन करो, और वर्णन करके लगन में मगन हो जाओ। बहुत जरूरी है लगन। अगर लगन की अगर कमी है तो बिघन ही बिघन है। कई कंप्लेन आती जिनकी लगन की कमी है। बाबा ने हम सबको प्यार दिया है, पालना दी है, और वो दिन पर दिन बढ़े, कम ना हो जाए। योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है, ऐसा होता वैसा, उसका कारण क्या? केवल प्रेम की कमी। सच्चा प्यार बाबा से हो जाए बस, भूलेगा ही नहीं, उसकी याद में हम खो जाएंगे। तो जहां लगन है वहां विघन नहीं, और जब लगन से मुक्त आत्मा मगन हो जाती है, लौ लीन समा जाती जैसे बाबा में, वो मगन स्थिति है। तो मन को अगर हम भिन्न भिन्न रीति से इन्हीं चीजों में बीच बीच में भ्रमण कर देते, भले कितने भी काम हो, आप एक साथ कई काम करते होंगे, मैंने कई बार नोट किया है, बुद्धि का काम बहुत किया है मैंने भी। जब बाबा आते थे, अब एक बाबा का पाठ चलता तो मैं पूरी रात बाबा के साथ रहता, पहले हाथ से लिखता था और फिर लिखता था। तो एक बार मैं, बाबा बोल रहे थे, मैं लिख रहा था, अचानक कुछ कुमारों का जोश आया, और जोश में कुमारों की भट्टी थी और उसमें अब्दुल कलाम जी आए हुए थे। उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे लेकिन ऊंचा पद था, उसकी सिक्योरिटी बहुत थी, साइंटिस्ट तो थे ही हमारे। तो दो तीन कुमारों को पता नहीं क्या नशा चढ़ा, मुरली के बीच में जंप लगाया और बाबा के पास पहुंच गए जाकर के। अब जब वो बाबा के पास कूद के गए ऐसे, तो हमारी जो सिक्योरिटी बैठी होती है ना, वो भी इनके पीछे भी ये दौड़ गई, और उस सबको ऐसे इसको उठा लिया जाकर के, कुमार को डंडा डोली करके बाहर। अब उनकी सारी, अब्दुल कलाम की सिक्योरिटी तो सारी बंदूक वाली थी, वो भी खड़ी हो गई सारी। लेकिन वो जो मुरली की लहर चल रही थी, अचानक चेंज हो गई बाबा की। एक मिनट में बाबा कहते बच्चे साइलेंस। मेरा ध्यान गया, क्या हुआ क्या? मुरली इस टॉपिक पर चल रही थी और अचानक बाबा कहता साइलेंस, मुरली चेंज हो गई। इतनी एकाग्रता कि क्या हो रहा है स्टेज पर, भले ध्यान उधर ही है मेरा, लेकिन कहीं एक शब्द भी बाबा का मिस ना हो जाए, इसको जरा भी भटकाना नहीं कहीं भी। लेकिन एक बात कई बार नोट की मैंने, कि मैं टाइप कर रहा हूं, बाबा की मुरली सुन रहा हूं, फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर के विचार आ रहे हैं। एक साथ मन कई जगह पर भ्रमण कर सकता है, उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए। अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर है तो हम उस पर रूल कर सकते हैं, जिधर चाहिए उधर ले जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान ही नहीं है तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। सेवा कर रहे हो, अपना कंप्यूटर भी चला रहे हो, हिसाब किताब भी कर रहे हो, फिर भी वो कहीं कहीं घूम के आता है। नोट करना इसको, उसको बचाना है। जो वो जा रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड में, भाग तो इधर से उधर भटक रहा है, अगर उसको बचा लिया, उस शक्ति को बचा लिया। काम के लिए कोई मना नहीं है, खूब करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो टू मच ऐसे नहीं व्यस्त हो जाओ जो अपनी उन्नति के लिए समय ना हो। हमारे लिए, हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आध्यात्मिक पथ के राही हैं, और हम कहें हमारे पास टाइम नहीं है, अमृत वेला करने का टाइम नहीं, मुरली सुनने का टाइम नहीं। इतना बिजी हो जाते हैं जो फिर धीरे धीरे माया को चांस मिलता है, फिर बुद्धि को भटकाती है वो। इसलिए बहुत बैलेंस से चलना है, जितने जरूरी थे करो, मना नहीं करता बाबा, लेकिन टू मच बिजी हो करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वउन्नति के लिए समय नहीं निकाला, ये ठीक नहीं है। बैलेंस रखो। और बाबा ने साकार में बहुत सुंदर बैलेंस बना के दिया, 24 घंटे को कहा बच्चे 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए करो, 8 घंटा तुम शरीर को दो, सो नहाओ दो खाओ, 8 घंटा इसको दो और 8 घंटा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दो। योग करो, मनन चिंतन करो, स्टडी करो, सेवा करो बाबा की, कम से कम ऐसे 3 भाग में अपनी दिनचर्या को बांट लो। अब 8 घंटे की जगह अगर आप 12 घंटा 14 घंटा बिजी हो, ना रेस्ट मिल रही है, ना समय पर भोजन खा रहे हो, ना एक्सरसाइज हो रही है, तो कितना दिन चलाओगे शरीर को, कैसे आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए मन को सशक्त शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहला ध्यान है कि मन को अच्छे विचारों का चिंतन दिया जाए, और वो सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। वरदान से, मुरली से, कोई भी बात, अच्छा चिंतन, सकारात्मक चिंतन, और फिर सारा दिन चलते चलते हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखना। कई लोग ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं इनके ऊपर सारी जवाबदारी आ गई। मैं कहता हूँ क्यों सोचते हो ज्यादा, बाबा जब बैठा है, बड़े बैठे हैं, यज्ञ उसका है, ठीक है हमारी जो जवाबदारी हम एक्यूरेट करें, जहां पर मेरा लेना देना नहीं मैं अपनी बुद्धि को क्यों लगाऊं, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट उस पर नहीं रहता, जो जवाबदारी वो एकदम एक्यूरेट हो। लेकिन जहां दूसरे जवाबदार हैं, जो उनकी डिपार्टमेंट है, उनके जवाबदार अलग बैठे हैं, उसमें मैं इंटरफेयर न करूं, अपनी बुद्धि को न लगाऊं, न खुद डिस्टर्ब हूं, न दूसरे डिस्टर्ब करूं। अगर हम अपने मन बुद्धि को इन सब व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से सेफ कर लेते हैं, तो बहुत सा समय हमें अपने लिए मिलता है। अधिक समय अगर आप नोट करके देखेंगे, बाबा कई बार कहते 3 पर जो हैं, जब तक ब्राह्मणों ने नहीं काटे तब तक परोपकारी नहीं बन सकते, मनसा सेवा नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा पर चिंतन, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, यज्ञ में ऐसे चलता पलट, अरे तेरा लेना देना क्या है। बड़ी दादी हमेशा कहती थी ये क्या इनको चश्मा पड़ा हुआ है, 80-90% जो अच्छा होता वो दिखाई नहीं देता, और 5-10% कोई गलत हो जाता उसी पर नजर इनकी जाती। मेरी दादी बहुत प्यार से बात समझाती थी, भाई इतना बड़ा संगठन है, इतनी सेवाएं हैं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता ही है ना, उसी पर क्यों ध्यान दे रहे हो। आज इतने लोग आते हैं, इतना रिफ्रेश होके जाते हैं, इतनी उनके अंदर श्रद्धा भावना, देखो क्या उनको मिलता है, अच्छा ही नहीं दिखाई देते लेकिन बुराई पर ही नजर जाती है। तो हम सब इस बात पर बहुत अटेंशन दें कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है, और इस संकल्प शक्ति से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। कई अनुभव मैंने इस जीवन में किए हैं, वर्णन नहीं करता हूं, लेकिन लोगों को लगेगा शायद इनको अपना संकल्प का अभिमान है। जो संकल्प बाबा दे देता है, सब कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, सफलता हमें मिलती है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा किसी को कहना नहीं पड़ता, करण करावन हार बाबा करा रहा है। सिर्फ 2 बातें, बाबा की टचिंग को कैच करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय कोई साकार में आपको टच करने वाला कहने वाला नहीं है, और प्रैक्टिकल में 20 साल हो गए होंगे, 21 साल जब से दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त हुए, उसके पहले 1.5 साल से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हर चीज को डायरेक्शन देती थी, हर चीज सिखाती थी, राजू आज तुमको ये लिखना चाहिए, ये लिखो, ये लिखो, ये ब्राह्मणों को ये भेजो, वो हमेशा डायरेक्शन देते। आज मुझे बाबा ने ये टच किया, आज ये कहा, लिख रहा था मैं। लेकिन धीरे धीरे वो शांत हुई, और उसके बाद दादी जानकी आई, जो तुम कर रहा है वो करो, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब इतने सारे ब्राह्मण परिवार की जब मैं बैठता हूँ ना ऐसे ऑफिस में कंप्यूटर के सामने, तो बाबा तेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ पता नहीं, तेरे को जो पालना करनी है मेरे हाथ चला ले तुम, भले पालना तुमको करनी है ना, क्या वरदान देना है, क्या व्यक्ति सारे देने हैं, मैं अपनी बुद्धि को नहीं चलाता हूं। और आज तक भी जहां मैं जाता हूं लोग कहते हैं आपने आज की मुरली कैसे निकाली, कहां से लाए, ये तो आज मेरे लिए मुरली चली। भाई तेरे को देख के मैंने थोड़ी मुरली निकाली, वो तो बाबा जानता है ना, जाने जानन हार करन करावन हार बाबा है, और वो हमारे साथ साथ है, बस उसको बस साथ रखो। बस इस समय संगम युग पर सबसे बड़ा सर्वेंट तो बाबा ही बनाया है, और उसको यूज करो ना, जहां जाओ जैसे रहो जिस हालत में बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, और सदा साथ निभाने वाला है। साकार में तो कोई साथ देगा कोई चला जाएगा, स्वार्थ होगा तो देगा, स्वार्थ पूरा हो गया तो ओम शांति। इसलिए बाबा को सच्चा साथी बना करके अपने आप को, केवल दादियों ने तीन चार बातों का जो ध्यान दिया मैं बताता हूं, इतनी सब बड़ी सेवाओं की जवाबदारी संभालते हुए मैं तो निमित्त हूं, कभी अपने को बड़ा समझा ही नहीं। एक बार अखबार वाले दादी के सामने आए, प्रकाशमय दादी के साथ में बहुत रहा हूं ना उनसे, दादी से पूछते दादी आज के माँ बाप को अगर एक दो लड़कियां होती हैं उनको चिंता हो जाती है कुछ हो न जाए, और आपके पास तो 30-40 हजार कुमारियां, आपको चिंता नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, समाज गलत है, व्यवहार गलत है लोगों के। तो दादी मुस्कुराते हुए कहते भाव क्या बोलते हो, ये मेरी थोड़ी है तो बाबा की। दादी साकार में तो आप है ना सब, निमित्त तो आप हैं, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। कहती है मैं निमित्त हूं, करण करावन हार बाबा है, शिव बाबा का यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसको इन्होंने जीवन दी है, मेरे को थोड़ी दी है। मैं शुभ भावना रखती हूं, नेचुरल वो शुभ भावनाओं का इतना घेरा था जो कोई आत्मा उससे गलत चाह ही नहीं सकती, वो करती है तो अपना भोगती है। कहती है मैं तो बिस्तर पर ऐसे सिर रखती हूँ, सो जाती हूँ एक मिनट में, मेरे संकल्प नहीं चलते क्या होगा कैसे। इतनी निसंकल्प स्थिति उन्होंने अपनी बनाई थी, तो निमित्त समझ करके निसंकल्प स्थिति बना ली, और फिर निर्माण चित इतनी जो देखा होगा आपने, कोई अगर बड़ा आ गया पद पोजिशन वाला अपनी गद्दी छोड़ देना, कोई गुरु अपनी गद्दी छोड़ता है क्या। दादियों ने, दादी प्रकाशमणि ने खास मैंने देखा, चाहे वो जैन मुनि आ गए, चाहे कोई सन्यासी आ गए, चाहे कोई पदाधिकारी राजनेताएं आ गए, दादी मुरली सुना रही है, क्लास करा रही है, वो आए, दादी चुपचाप उठ गई, हाथ जोड़ती है आओ बैठो, इतनी निर्माणता। सन्यासी लोग जो पिघले हैं उसका मूल कारण था दादी जी का झुकना, निर्माणता। एक बार एक साधु संतों का पहला सम्मेलन हुआ, और पहले सम्मेलन में जगदीश भाई को बहुत ध्यान था कहीं कोई डिस्टर्ब न हो जाए, तो ओम शांति भवन को ऐसे स्टेप वाइज बिठाया बनाया कि सबको हम जो सम्मान देने के लिए स्टेज पर बिठाएंगे, सामने नहीं बिठाएंगे, सबको सम्मान देंगे। तो एक का नाम थोड़ा सा नीचे, उसका पदवी थोड़ी ऊंची थी, जगत गुरु की पदवी थी, वो डंडा वाला था, और उसका नाम नीचे था और ऊपर दूसरे का लिखा था। वो गया स्टेज तक और नाम पढ़ा, और एकदम उसको गुस्सा आया और भागा वहां से, और सीधा भाग करके आके सुखधाम में जहां कमरा था, वो आके अपना कमरा बंद कर लिया। वो जगदीश भाई तो बहुत तेज थे, उनको बुद्धि बहुत विशाल थी, उनको लगा कि ये नाराज होके भागा है, वो भी भागे उसके पीछे पीछे आए, उसका कमरा ठकठकाया, बाबा खोलो बाबा खोलो, बाबा तो गुस्से में नहीं खोला दरवाजा। तो जगदीश भाई दादी के पास चले गए, दादी ऐसे ऐसे हुआ है, वो कुछ तो नाराज हुआ, कारण मुझे नहीं पता चला, लेकिन इतनी जोर से जोश में भाग के गया, कमरा बंद कर लिया, बोलता ही नहीं है निकल, ठीक है चलो मैं चलती हूँ। अब दादी जी इतनी निर्माणचित आ गई उसके दरवाजे पर, दरवाजा ठोका, अपनी आवाज प्यार से बोला बाबा जी दादी आई है, दादी आपसे मिलना चाहती, एक मिनट आप दरवाजा खोलो। पिघल गया, वो इतना स्नेह से इतना प्यार की आवाज सुनी, खोल दिया दरवाजा, बाबा मुझे माफ करो, कुछ गलती हुई होगी, आप स्टेज पर चलो। कुछ नहीं बोला, चुपचाप दादी के पीछे पीछे आ गया। फिर जगदीश भाई को लगा यही हुआ होगा, क्योंकि दूसरे सन्यासियों ने गाइड कर दिया कि इसका नाम ऊंचे कर दो, ठीक हो जाएगा। उसका पट्टी को वहां से हटा के नाम नेम प्लेट को थोड़ा ऊपर रख दिया, आया आराम से बैठा। लेकिन एक भूतपूर्व शंकराचार्य था उसमें, वो जब भाषण करने लगा तो कहता है कि हमारी मंडली में सन्यासियों के अंदर बहुत वंडरफुल उसने दृष्टांत दिया। कहता है आप लोगों को पता है कौवा कहाँ बैठता है? भाषण करते करते बोला कौवा कहाँ बैठता है? झाड़ पर, वो जब सबसे ऊंची चोटी होती है उसी पर उसको स्थान चाहिए, बीच में नहीं बैठेगा कहीं। हम लोग भी ऐसे ही, हमको भी ऊंची चोटी चाहिए। माना उसको पता चल गया ऐसा हुआ है। उसके बाद देखो दादियों के अंदर जो निर्माणता थी, नम्रता थी, वो निमित्त थी, निर्माण थी, और वाणी बहुत निर्मल रखी। कभी वाणी में जोश नहीं दिखाया, कुछ भी कोई करके आए इतना गुस्से में आके बोला नहीं, ठीक है तुम ठीक है विचार करेंगे। निर्मल वाणी, बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। और निर्वाण स्थिति जाना है वाणी से परे, यही चार बातें लेकर के उन्होंने अपनी मनसा सेवा को अच्छा बढ़ाया और अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली। हम सब बाबा के बच्चे, इतना तो समझ सकते हैं जिस कार्य के हैं, भले लौकिक जवाब हम कर रहे हैं, हमको बाबा ने जवाबदारी दी है, हम निमित्त हैं। कराने वाला वो है, उसके डायरेक्शन है, हम कर रहे हैं, उसमें जरा भी मैं पर ना आए, इतनी निमित्त भाव रहे। दादियों ने इतना सब किया है, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने किया है, कभी शब्दों में भी नहीं आया मैंने किया। एक तो दूसरी बात सुनाता हूं, जब दादी जी को डॉक्टर ने मना कर दिया ना कि ऊपर नहीं जाना, शांतिवन में रहो, ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हम लोगों को चार पांच भाइयों को रोज कहती तुम लोग ऊपर जाओ और सब देख करके, देख वहां रहे ना, रात को सुबह आ जाना, सुबह सुबह मिलना करके। तो हम रोज चार पांच भाई रोज जाते ऊपर, नीचे जाते ऊपर आते, अप डाउन करते थे। तो एक दिन ऐसे बैठी थी, मैं गया मिलने के लिए, आंख बंद करके बैठी थी, मैं बाजू बाजू बैठा, हमने दादी अच्छा तुम आ गया, दादी ज्ञान सरोवर ठीक है, वो ज्ञान सरोवर समय बना था, कुछ बातें चल रही थी, पांडव भवन ठीक है, एक एक चीज का हाँ पूछती गई समाचार, हमने कहा हाँ दादी, हाँ दादी सब ठीक है, सब ठीक। अचानक कहती कैसे, अब कैसे का उत्तर मैं क्या दूं। तो हमने कहा दादी एक बात बाबा कहता है सुनाओ, कहती हाँ बोलो, कैसे ठीक चला सब। आप जो यहां बैठी है ना, आपकी शुभ भावनाएं, आपकी संकल्प पवित्र श्रेष्ठ, वो सारे यज्ञ को बहुत अच्छा चला रहे हैं, निर्विघ्न चला रहे हैं, आपकी मनसा सेवा बहुत पावर, क्या बोलता है मेरे को डांटा है, तो मेरी महिमा कर रहा है। अरे बाबा करा रहा है, मैं क्या कर रही हूं। माना अपनी कोई भी महिमा तक उन्होंने स्वीकार नहीं की। और आप हम सब जानते हैं जितना यज्ञ का विस्तार हुआ है, जितना आज निर्विघ्न यज्ञ चला है, उन सब के पीछे हमारी दादियों की तपस्या है, उनकी शुभ भावनाएं हैं, उनके ऐसे श्रेष्ठ संकल्प रहे हैं कि कभी भी यज्ञ में कोई कमी न पड़े, कोई नुकसान न हो, कोई विघ्न न आए, इतनी शुभ भावनाएं रखी, ये मनसा सेवा है। इस बात को समझना, क्योंकि दादी जानकी दादी जब आती ना पोस्ट पर, तो हम बहुत रमणीकता से मिलते थे, जैसे बूढ़े बच्चे समान होते ना। तो एक दिन मैं गया, दादी बैठी थी ऐसे, कहती है राजू ऐसे दिखाया यहाँ ये चित्र है ना, ये सर दादियों वाला जो एडवांस पार्टी में गए, देख सबको बाबा ने बुला लिया, मुझे वीजा नहीं देता वीजा नहीं देता, मैं दादी आपको देने का देगा भी नहीं। कहते क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं दे बच्चों जैसा, क्यों नहीं देगा। दादी आपकी बहुत जरूरत, क्या जरूरत है, मैं क्या कर रही हूं। मैं दादी आप बैठी है ना, तो ये भंडारा भंडारी भरपूर है, मालूम है इतना उनका यज्ञ की भंडारी से भंडारे से प्यार था कि एक रुपए की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इतनी उम्र में 104 साल की उम्र में टूर करना, सफर करना, लक्ष्य क्या था? बाबा की भंडारी भरेगी, यज्ञ में कोई कमी नहीं पड़ेगी, जहां जाऊंगी बच्चे सब बाबा को सहयोग देंगे। इसलिए उनकी जो शुभ भावनाएं रही, यज्ञ निर्विघ्न रहे, यज्ञ भरपूर रहे, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए दादियों की शुभ भावना से यज्ञ का विस्तार हुआ है। और हम सब नेचुरल उस धारणा को अपना लें। क्यों सोचते हैं ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, इसने किया, उसने किया? बाबा कहता बच्चे तुम सोचना बंद कर दे, सोचने का काम मुझे दे दे। दिया है, दिया है सोचने का काम बाबा को, मैं बैठा हूं तुम क्यों सोचता है? दिया है नहीं दिया है? यीशु क्या बोलती? दे दो अपने सोचने का काम बाबा को दे दो, बाबा अपने आप सोचता है। लेकिन इतना समर्पण भाव चाहिए अंदर से। उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, विस्तार हो रहा है, होगा। 2017 तक 9 लाख नहीं थे और 2026 में 14 लाख हैं। कहां से आ गए ये सब? बाबा का पार्ट पूरा हो गया, दादियां भी एडवांस में चली गई। करण करावनहार प्रभु की लीला है ये सब। वतन में बैठा हुआ शांत नहीं है, बच्चों को भगा रहा है, करा रहा है। इसलिए हम सब बाबा को पहचाने, उनकी शक्तियों को जाने और उनके कार्य में सदा शुभ चिंतक बन करके सहयोगी बने, वही मनसा सेवा है। खास बैठ करके कोई योग करके मनसा सेवा करने की जरूरत नहीं है। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। कोई भी आत्मा कुछ भी करे, मुझे व्यर्थ सोचने की मना है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, इसके कारण ऐसा हो गया। बाबा कारण कारण नहीं करो। ड्रामा में कुछ पाठ सिखाने के लिए सीन आती हैं। सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो, अनुभवी बनो, प्रश्नों में नहीं उलझो। इसलिए हम सब सदा प्रसन्न चित्त रह करके मन को बड़ा शांत एकाग्र एकदम स्थिर करके चलेंगे। कोई भी उत्पत्ति ऐसी न हो जाए जो हमारी दिशा चेंज हो जाए। सिर्फ ध्यान देना, एक दिशा चेंज न हो और इसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में हो। स्पीड पर बहुत ध्यान देना, तो टचिंग को कैच करना, कंट्रोल पर रूल करना। जो हमारी कंट्रोल पावर है, कंट्रोलिंग पावर, कितने समय में अपने मन को हमें शांत कर सकता हूं। बातें ऐसी वैसी देखी सुनी, बातें बहुत हैं, विस्तार बहुत है, लेकिन क्या मैं अपने संकल्पों को बैठते स्टॉप कर सकता हूं? स्टॉप करके देखो, होती है या नहीं होती है? स्टॉप और स्टार्ट, स्टॉप करके तो रुकना तो है नहीं, चलना है ही, लेकिन अगर वो गलत दिशा की ओर जा रहा है तो वहां स्टॉप कर दो और अपनी सही दिशा में आ जाओ, मोड़ो उसको। इसलिए ब्रेक देना और मोड़ना, ये दोनों शक्तियां हैं तो मनसा सेवा की जा सकती है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, टचिंग पावर और कैचिंग पावर, अगर इन पर हमारा ध्यान है तो आप सब कहां भी रहते, कैसी भी स्थिति में रहते हुए शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। वायुमंडल वाइब्रेशन हमारी वृत्तियों से निर्माण होता है। जिस प्रकार की हमारी आंतरिक वृत्तियां हैं वैसा वाइब्रेशन बन जाता, और जिस प्रकार की हमारी वार्तालाप से है, वार्तालाप चलती, बातें चलती, वैसा वायुमंडल क्रिएट होता है। तो हम अपनी वाणी पर और अपनी वृत्तियों पर अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं हम सब बाबा के इस बड़े यज्ञ के रक्षक बन सकेंगे, बाबा के कार्य के सहयोगी बन सकेंगे। तो आप सभी योगी और सहयोगी बन करके क्या करेंगे? बाबा का नाम रोशन करना है। अभी समय आ गया है, बाबा कहता बच्चे अब प्रत्यक्षता का समय है, बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बना करके बाबा को प्रत्यक्ष करो। स्थिति ही हम सबको अंत समय में अनेक परिस्थितियों से पास कराएगी। कोई चीज काम नहीं आने वाली है, न धन न साधन न पद न पोजीशन। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो कैसी भी बातें आएंगी, नथिंग न्यू, पार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए आप सबको समय मिला है, चांस है भट्टी करने का। और बहुत श्रेष्ठ स्थिति, और श्रेष्ठ स्थिति का आधार अच्छी स्मृतियों में रहना। जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, अनादि स्वरूप की, आदि स्वरूप की, पूज्य स्वरूप की, ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की स्मृति तो दिलाई, इन स्मृतियों में रमण करेंगे तो स्थिति अच्छी बन जाएगी। और अच्छी स्थिति है तो आने दो परिस्थिति, क्यों आ गई, कैसे आ गई, नहीं आने दो, आएगी तब तो विजयी बनेंगे। विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, क्यों सोच रहे हो, आया है तो हम विघ्न विनाशक हैं, पार करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनाना और बहुत अच्छी तपस्या करके कुछ संकल्प लेकर के हमसे जाना कि ओम शांति। कोई को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो योग करके पूरा करेंगे। कुछ प्रश्न है कोई का? प्रफुल्ल भाई कुछ पूछना है? अभी पूना गए थे ना, मेरे को एक घंटे तक कितने सारे प्रश्न पूछ रहे थे। कहता हम YouTube के लिए आपसे प्रश्न पूछेंगे, पूछ लो भाई, बिठा दिया मेरे को। कुछ पूछना है? हाँ वो बहन जी हाथ उठा रही, बोलो। क्या कर कैचिंग पावर अलग चीज है, कंट्रोल अपने संकल्पों पर है। देखो बाबा कई बार कहते हैं मैं अपने बच्चों को सदा टच करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे अपनी बुद्धि को इतना इंगेज करके रखते हैं जो मेरी टचिंग को कैच ही नहीं करते, फिर धोखा खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा मदद ही नहीं करता। तो कैच करने के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए। ज्यादा सोचेंगे तो कैच नहीं कर पाएंगे। टच करने वाला तो टच कर रहा है ऊपर से, बच्चे ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे इधर जाओ, इधर न जाओ, लेकिन उस टचिंग को कैच करने वाले की बुद्धि बड़ी क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए, शांत चाहिए, तब बाबा की टचिंग को आप कैच कर सकेंगे। तो टचिंग बाबा की है, कैच करना हमारा काम है। बस स्वच्छ रखो मन को, शांत रखो, बहुत ज्यादा नहीं सोचो क्या होगा कैसे होगा, सब अच्छा होगा, बाबा बैठा है। पायलट जब प्लेन उड़ाता है ना, अगर जरा भी उस जहां से जहां पहुंचना है वहां से कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन टूटा तो क्या होगा, वो डरेगा, आप कहां जाएगा, पता नहीं किधर भटक जाएगा। हम सबका उस पावर हाउस से कनेक्शन है, कंट्रोल रूम से, अगर जरा भी कहीं हम इधर उधर हो गए तो पता नहीं कहां गिरेंगे जाकर के। इसलिए सब ध्यान देना, बाबा बैठा है, हम सब उसके साथ ऐसे कनेक्ट होकर के रहें जो बाबा टच करे और हम कैच कर लें। ये करो ये न करो, बच्चे यहां शांत हो जाओ। अगर बाबा की टचिंग है, कई बार हमारे मन के विचार ही होते हैं, हम कहते हैं बाबा की टचिंग आ रही है, अगर टचिंग है तो उसमें दुविधा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे। और कई बार जो बात अंदर अचानक टच हुई है वो मुरली में भी आ जाएगी, क्लास में भी आ जाएगी, कोई आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वो दिखाई देगा कि जैसे ये बाबा ने कहा ये हमारे को आज टच हुआ। तो टचिंग मैच करेगी, समझा, टचिंग मैचिंग, मैच करो बाबा की मुरली खोल करके, जो आज मुझे टचिंग आई है क्या वो मुरली में भी है, खोलो उसको मुरली को देखो, और हो सकता है जो आपको टचिंग आई वो मुरली में भी हो। तो हम कहते हैं टचिंग और मैचिंग साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ पीछे क्या बोले, साक्षी दृष्टा, कभी आपने नाटक तो देखा होगा ना, जैसे कोई, जैसे रामायण चली या महाभारत चली, तो एक दिन की बात सुनाता हूं, रमणीक है। हमारे मधुबन वालों ने दादी को कहा दादी रामायण की बहुत चर्चा है, और रामायण जब चलती है तो सब दुकानें सब लोग अपना बंद करके वही देखते रहते हैं, मधुबन वालों को भी तो आप एक बार दिखाओ ना। तो दादी को मतलब सबने एप्लीकेशन दी, दादी का हाँ भले, आज मेडिटेशन हॉल में भाई रामायण क्या चलेगी, आज की सीरियल दिखा देना। तो शाम को 8 बजे टीवी वाले ने चालू किया रामायण, और सब भाग भाग करके रामायण देखने आ गए। और दादी बहुत साक्षी होकर के हरेक की शकल देख रही, रामायण नहीं देख रही थी। तो उसमें क्या हुआ, वो था उस दिन राम का विलाप, सीता हरण हुआ था, वो सीन ऐसी थी जो राम का विलाप ऐसा था जो सबको रुला दे, सीता के पीछे इतना विलाप कर रहा है। तो कई लोग बैठे थे, उनके आंसू बहने लगे, देखने देखते आंसू बहने लगे, दादी ऐसे देख रही है, ये क्यों रो रहा है, इसको क्यों आंसू आ रहे हैं। दादी कहती, अब तुम लोगों को कभी रामायण नहीं दिखाऊंगी मैं। अरे ये नाटक कर रही है, एक्टर है, अपना खेल कर रहे हैं, तुम साक्षी होके देखो कि अभी ये यहाँ पर रो रहा है और बाहर जाके बीड़ी पिएगा, जाके खेल करेगा जाके। अरे ये एक्टर हैं सारे, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इस नाटक को बेहद की दृष्टि से अगर हम ये देखते हैं, ये कितना अच्छा पार्ट बजा रहा है विलियन का पार्ट, गुस्सा कर रहा है और हम साक्षी होके देख रहे हैं, हम उसको कभी भी डिस्टर्ब न कर रहे हैं न डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका एक पार्ट है। इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा, इन्वॉल्व नहीं हो जाओ उसके कारण, उसके पार्ट के कारण प्रश्न उठा लो, अपने दुखी कर लो, ऐसा हो रहा है, ऐसा इसके साथ हो रहा है इसका, अरे भाई उसके हिसाब किताब है, उसका कुछ पार्ट है, मैं अपने आप को डिस्टर्ब क्यों करूं। अगर हम ऐसी स्टेज बना लेते हैं, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। और क्या प्रश्न उठ गया पीछे से ही? देखो इसमें दो तीन बातें बाबा ने समय प्रसमय कही हैं, बैठ जाओ। कई बाबा की मूलियां ऐसी चली हैं जब जिनकी बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, टचिंग आएगी, लास्ट प्लेन होगा, वो यहाँ पहुंच जाएंगे विनाश के समय, उसके बाद वो प्लेन बंद हो जाएंगे, उसके बाद वो साधन बंद हो जाए आने जाने के। लेकिन एक बार बाबा ने और फिर विदेशियों के सामने बोला कि बच्चे साधन मिले न मिले, लेकिन जहां पर आप हैं फरिश्ते रूप में वहां रह करके आप सेवा करेंगे। सबको यहाँ भागने की जरूरत नहीं है, कई बार यहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। अब कोविड के अंदर की वो हालत थी, जो यहाँ थे ना वो भी जेल में जैसे थे, खाना भी उनको कमरे में मिला था, बाहर भी नहीं निकल सकते थे, कॉलोनी वाले बाहर वाले तो अंदर आ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए ऐसा समय आएगा जो हम ये लक्ष्य न रखे हैं मधुबन में ही भाग के जाएंगे, हम जहां पर भी अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जो आपका वो स्थान सबके लिए ऐश्लम स्थान बने, कईयों को वहां से सहारा मिले। आज इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर क्यों बन रहे हैं, लोग सोचते पता नहीं क्या ब्रह्मा कुमारियों को हो गया। और बाबा की प्लानिंग कुछ अलग होती है, इंसान की प्लानिंग अलग है। तो बाबा के अंदर ये संकल्पों में रहता है कि बच्चों का अंत समय जब हो तो ऐसे ऐश्लम स्थान हो जो कम से कम वहां से उनको भोजन मिले, शांति मिले, प्यार मिले, ऐसे बन रहे स्थान। तो ऐसे नहीं सबको मधुबन की तरफ ही भागना है, कई स्थान भी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच करके वहां ले आएंगे, सेफ्टी के स्थान पर ले आएंगे। मैंने एक बात देखी है, बाबा के बच्चे बहुत अथक बन करके कोई भी काम लेते हैं ना तो उसको पेंडिंग नहीं रखते, काम समय पर पूरा करते हैं, और समय के पहले भी इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि उनके मन में दूसरे कोई इधर उधर के ख्यालात नहीं, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये कंप्लेन सुननी पड़ती होगी कि उनका क्लाइंट का काम रह गया, अधिकतर सब समय पर पहले से ही पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इतना बड़ा कार्य लो भी नहीं, पहले से ही आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है सामने वाला तो गाली भी देगा, गुस्सा भी करेगा, आपको कहेगा हमने काम दिया आपने करके नहीं दिया। या तो अपने हैंड्स बढ़ाओ आप, या तो काम कम कर दो। आपको टेंशन फ्री रहना है तो विधिवत चलना पड़ेगा। हम ज्यादा जवाबदारी ले लें पैसे के कारण, इसके कारण, और हम कर ना पाए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ब्राह्मणों के लिए तो विशेष ठीक नहीं है। हम लोगों के पास बहुत सारी जवाबदारियां, लेकिन हम सब कुछ एडवांस में करते, कोई ये ना कहे राजू भाई इधर घूमने गया, इधर क्लास कराने गया, आज मुरली नहीं है, आज पत्र पुष्प नहीं आया, आज ये नहीं आया। सब कुछ पहले से यहाँ इतना बिजी रह करके सब सेट करता हूँ, उसके बाद बाहर जाता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता ये लेट हो गया, एक लेट होगा तो पूरे वर्ल्ड लेट हो जाएगी, क्योंकि पहला काम मेरा है, मुझे सेट करके देना है। इसलिए हिम्मत रखो और अपने आप को व्यर्थ से बचाओ, न इधर बैठना न उधर बैठना, जितना काम कर सकते हो कर दो, लिया है तो फर्ज निभाओ और अगर नहीं लेना है तो पहले से बता दो भाई इतना काम मेरे से नहीं होगा, या अपना स्टाफ बढ़ा दो, टेंशन फ्री रहना है तो खुद युक्ति रचो ना। अभी क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के क्लास हो जाएगा। अर्थ यही है कि जो बाबा की मुरलियां चलती हैं उनका चिंतन इतना अच्छा करो, जो कोई दूसरी बातें उसके अंदर आए ही नहीं, वो स्टॉक हो गया आपके पास। आज हम लोगों को क्लास कराना है तो अपने अच्छे चिंतन का स्टॉक है तब हम बोल रहे हैं ना, स्टॉक जमा किया हुआ है ना। और बाबा ने दीदियों ने इतना जमा कराया है, बहुत विधियां बताई, मुरली सुनो, पैदल करो, चिंतन करो, फिर आओ लिखो, अपनी डायरी बनाओ, अपने आप को अच्छी तरह से अच्छे चिंतन से भर लो, तो वो अच्छा चिंतन तो आपका स्टॉक है। और वो स्टॉक समय पर यूज होता है, समय आता है, समय पर निकलता है, और दूसरी बातें इसके अंदर है ही नहीं जो चलेंगे, तो स्टॉक में भरा है शुभ चिंतन करके, ज्ञान चिंतन करके। चलो लास्ट है, हाँ बोलो। पहले अपने को भी पढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम दूसरे के पार्ट में तो साक्षी हो जाते हैं सहज, और जब मेरे ऊपर आता है तो उसके चिंतन चलना शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई ने पहले से अभ्यास किया है, पक्का किया है, ये सब पार्टधारी पार्ट में जा रहे हैं, मैं भी अपना पार्ट, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो, ये जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये तो अभ्यास करके देखो साक्षी होकर के। जब अपने आप का चिंतन करेंगे ना, अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर, अपने संस्कारों पर ध्यान देंगे, इसको कहते हैं स्वयं को पढ़ाना, सेल्फ स्टडी। अगर कोई को अपना परिवर्तन करना है तो उसे पहले खुद का खुद टीचर बनना है। दूसरा कितना भी पढ़ाएगा आप कोई सुधरेंगे नहीं, अपने को पढ़ाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। तो अपने को पढ़ा करके पहले अपने को मजबूत बनाना है, फिर दूसरों को ज्ञान देना है। बाबा ने तो यही सिखाया है।